الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء کی آیت نمبر 7 ہے جو ہم شروع کر رہے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. والدین اور رشتہ دار جو چھوڑیں اس میں مردوں کا بھی ایک حصہ ہے, اور والدین اور رشتہ دار جو چھوڑیں ان میں عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے. مما قل منه او كثر, خواہ وہ جو چھوڑا گیا ہے مال تھوڑا سا ہو یا زیادہ ہو, نصیباً مفروضہ, یہ مقرر کردہ فرض کردہ حصہ ہے. یہ جملہ سادہ بھی ہو سکتا تھا کہ تمہارے لیے تمہارے ماں باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں حصہ ہے عورتوں کے لیے مردوں کے لیے بھی, لیکن بعض چیزیں رجسٹر کرانے کے لیے, ذہن نشین کروانے کے لیے الگ سے کہنی پڑتی ہیں, تو اس لیے دو جملے الگ بنائے گئے. مردوں کا یہ ایک مقرر کردہ حصہ ہے والدین کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے اور رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے, اور عورتوں کے لیے الگ سے جملہ بنایا, اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو ان کے والدین نے چھوڑا یا رشتہ داروں نے چھوڑا. رشتہ دار جو ہیں وہ والدین تو واضح ہی ہے, رشتہ دار جو ہیں وہ دو طرح کے آگے زیر بحث آ رہے ہیں. ایک وہ جن کا جو کلالہ رشتہ ہے, وہ آگے چل کر واضح کروں گا کہ جن کے اولاد نہیں ہوتی, ماں باپ نہیں ہوتے, تو بہن بھائی یا عزیز رشتہ دار بن جاتے ہیں, یا کسی نے وارث بنا دیا, تو یہ دونوں آگے چل کر زیر بحث آئیں گے. نصیبن جو ہے وہ دونوں جگہ پہ نقرہ استعمال ہوا ہے, نصیبن عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی, تو اس کا مطلب ہے کہ آگے جو حصے بنائے جا رہے ہیں وہ الگ الگ ہوں گے, مردوں کے ڈفرینٹ ہوں گے, عورتوں کے ڈفرینٹ ہوں گے, دو جگہ پہ ایک جیسے ہیں. وہ جب ہم پڑھیں گے تو اس میں عرض کروں گا کہ یہ جو حصے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں یہ جینڈر کی بیس پر نہیں کیے, یعنی مرد عورت ہونے کی بنیاد پر نہیں کیے, لیکن بہرحال ایک خیال کسی کو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید خواتین کو پسند نہیں کرتے اس لیے اسے کم دیے, ایسا نہیں. تو للرجال نصیباً, تو مردوں کے لیے ایک حصہ ہے, اور وللنساء نصیباً, عورتوں کے لیے ایک حصہ ہے. ما ترک الوالدان والاقربون, تو وارث یعنی جن کے ہم موروث جو کہنا چاہیے, جن کے ہم وارث ہوتے ہیں, وہ دو لوگ بنا دیے ہیں, والدین اور رشتہ دار. ظاہر ہے کہ رشتہ داروں میں بچے بھی آ جاتے ہیں اور بہن بھائی بھی آ جاتے ہیں, اور کلالہ کی بنیاد پر کسی نے وارث بنا دیا وہ بھی آ جائے گا. تو والدین, بچے اور بہن بھائی, یہ ان کا آگے وراثت میں حصہ تقسیم ہوگا, تو پھر واضح ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ مما قل منہ او کثر, جائیداد ترکہ جو ہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو, تقسیم ایسے ہی ہوگا. کیوں؟ کہ نصیباً مفروضہ, یہ حصے اب اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں, فرض کر دیے ہیں, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. یہ اس لیے ضروری ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں تھوڑا سا مال ہے, کیا فرق پڑتا ہے, رکھ لیتے ہیں, تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. خواہ وہ ایک چمچ ہی کیوں نہ ہو, اس کو اسی طرح سے تقسیم ہوگا. ہاں, خود چھوڑ دیں لوگ وہ ایک الگ بات ہے, لیکن تقسیم کرنے بیٹھیں گے تقسیم ہوگا. تو اب یہاں پر دو باتیں میں نے عرض کر دی, ایک یہ کہ مردوں اور عورتوں کو الگ الگ اللہ تعالیٰ نے الگ انڈیپینڈنٹ جملہ بنایا ہے تاکہ سٹریس واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو حصہ دینا چاہتے ہیں. اگر ایک ہی جملے میں ہو جاتا تو اتنا زور نہیں رہنا تھا, ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات میں نے یہ عرض کر دی کہ والدین اور رشتہ داروں کو ہمیں وراثت کا میں شامل کیا گیا ان کی, اور تیسری بات میں نے یہ عرض کر دی کہ مال کم ہو یا تھوڑا ہو, تقسیم لازماً کیا جائے گا, اور نصیباً مفروضہ جو اللہ تعالیٰ آگے حصے مقرر کر رہے ہیں وہ فرض کردہ ہیں, ان میں تبدیلی نہیں کی جائے گی, وہ ویسے کے ویسے ہی مانے جائیں گے, جو حصہ اللہ نے مقرر کر دیا وہ مانا جائے گا. اب یہ بات چونکہ چلی تھی یتیموں کے معاملے سے کہ یتیموں کا معاملہ کیا ہوگا, کہ ان کا مال نہ کھایا جائے, مال نہ کھایا جائے, تو اب جب ان کو مال حوالے کرنے کا مسئلہ آ گیا تو فطری سی بات تھی, سوال پیدا ہو گیا کہ कैसे देंगे? मसलन एक आदमी के छः बच्चे हैं, उसमें दो बेटियां हैं, चार बेटे हैं, तो अब कैसे तकसीम होगा? तो उसकी वजह से कानून विरासत दे दिया गया, लेकिन कानून विरासत इस तरह से दिया गया कि हम सब के लिए कानून बन गया। ज़ाहिर है कि यतीमों को उनके बाप की विरासत मिलनी है, तो इस वजह से विरासत का कानून। अब जब तकसीम का मौका आया है, तो उस मौके पर कुछ आदाब बताए जा रहे हैं। इज़ा हज़रल किस्मत उलुल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन फ़र्ज़ुकूहुम मिन्हु। अगर विरासत की तकसीम के मौके पर करीबी रिश्तेदार आ जाएं, यतीम आ जाएं और मसाकीन आ जाएं, तो उनको उसमें से कुछ दे दो। पीछे बताया कि हिस्सा मुकर्रर है, लेकिन अगर तकसीम के मौके पर गरीब रिश्तेदार आ जाएं, यतीम आ जाएं, मस्कीन आ जाएं, तो कुछ ना कुछ उनको देना पड़ेगा। वकूलु लहुम कौलन मारूफा, और इस मौके पर उनको डांटना नहीं है बल्कि भली बात कहनी है उनको। तो दो काम उनके साथ करने। अब ये नसीबन मफरूजा जो है, ये उसके अंदर से इनको क्यों दिया जाए? एक आदमी फौत हो गया है, उसके बच्चों की या उसके वारिसों की अमानत हमारे पास, उसको हम तकसीम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम इन तीनों में से कोई आ जाए तो उनको दोगे। तो उसकी दो वजह हैं। आयत नंबर एक में दोबारा नज़र डालिए, तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने यह कहा है कि हम सारे के सारे नफ्से वाहिदा की औलाद हैं। तो ये तीनों लोग जो आए हैं, गरीब रिश्तेदारों में से कोई यतीम अजनबी, या रिश्तेदारों में से मस्कीन अजनबी, या रिश्तेदारों में से ये जो भी आए हैं, ये उस औलाद आदम से हमारे बहन भाई हैं। ठीक है, एक तो असूल ये है। दूसरा असूल आखिरी सूरतों में जाकर मालूम होगा, सूरह बलद में उसको वतवासो बिल मरहमा के अल्फाज से बयान किया अल्लाह ताला ने, कि जो मोमिन है, वो अच्छे लोग जो हैं, वो सब्र की तलकीन करते हैं और मरहमा की तलकीन करते हैं, शफकत की, मेहरबानी की, हमदर्दी की। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर हिस्से बनते हैं कि एक यतीम बच्चा आ गया है, आप जायदाद तकसीम कर रहे हैं, तो उसको भी बीच में से कुछ दे दीजिए, और मस्कीन आ गया, उसको भी दे दीजिए। तो इस तरह से जो मरहमत है, यानी हमारे अंदर जो मेहरबानी का जज्बा है, तरस का जज्बा है, शफकत का जज्बा है, और हमारा दूर दराज से जो आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से रिश्तेदारी कायम है, उसकी वजह से हमें ये दोनों काम करने हैं। तो यहाँ असल जोर पहली आयत के तहत है, ये वाजे रहना चाहिए, क्योंकि मज़मून वहीं से शुरू हुआ हुआ है कि यतीमों के साथ हमने क्यों हुस्ने सलूक करना है, ख्वा वो अजनबी लोगों के यतीम हो या हमारे अपने बहन भाइयों के बच्चे हों, इसलिए कि वो औलाद आदम हैं, हमारे रहमी रिश्ते में हमसे जुड़ते हैं। तो अब ये तीन लोग जो हैं मुआशरे में, रिश्तेदार, यतीम और मस्कीन, ये ज़रूरतमंदों की बात है। सारे रिश्तेदार ज़रूरतमंद नहीं होते, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर कोई भाई आ गया है, कोई इस तरह का आ गया, तो उसको भी तोहफे में कोई चीज़ दे दें तो बुरी बात नहीं है, ख्वा वो खाता पीता हो। लेकिन बहरहाल इसमें फैसला उन्हीं का होगा जो तकसीम कर रहे हैं और जिनके हिस्से हैं। तकसीम करने वाला, मिसाल के तौर पर मैं गया हुआ हूँ तकसीम करने के लिए किसी और का, तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उनमें से दूँ, मुझे अगर देना है तो उनसे पूछ कर देना है। ये ना हो कि मैं अपना आदमी साथ ले जाऊँ और उसको दे दिला के तो हिस्से ख़राब करके आ जाऊँ, नहीं, वो उनके जो हिस्सेदार हैं, जो वारिस हैं, उनके मशवरे से ये होगा। वकूलु लहुम कौलन मारूफा, और उनके साथ भली बात करो। ये यतीम आ जाते हैं, इस तरह के गरीब आ जाते हैं, तो लोग उनको डांटते हैं। ये कुर्बानी के गोश्त पर भी होता है कि जो लोग मांगने आते हैं, उनको लोग घर वाले डांट रहे होते हैं कि अब ख़त्म हो गया, चले जाओ, ये हो गया, वो हो गया, तो भले तरीके से उनको टाला भी जा सकता है, इनकार भी किया जा सकता है, तो डांटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनके साथ मेहरबानी के साथ अच्छे इज्जत वाले अल्फाज बोले जाएंगे। कौलुल मारूफ का मतलब ये होता है कि भले दस्तूर के मुताबिक, जो इंसानों के साथ बात करने का तरीका है, उसी तरीके से हम उनके साथ बात करेंगे। जो मुआशरे के कमज़ोर लोग होते हैं, उनकी इज़्ज़त आमतौर से नहीं होती, अल्लाह ताला वो इज़्ज़त उनको देना चाहते हैं कि यतीमों और मस्कीनों को भी वही इज़्ज़त मिले जो पैसे वालों को मिलती है। ये ज़ाहिर है कि इंसानी जो एहतराम है वो दीन के अंदर एक बुनियादी चीज़ है, हमारे यहाँ उसको बहुत कम अहमियत दी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि लोगों ने से आपने हज्जतुल वदा के मौके पर पूछा कि इस शहर का क्या नाम है, तो लोगों ने कहा जी कि मक्का है। आपने फरमाया इस महीने का क्या नाम है, उन्होंने कहा जी जिलहज का महीना है। आपने लोगों से पूछा कि ये आज कौन सा दिन है, उन्होंने कहा हज का दिन। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस महीने की, जो इस शहर की और जो इस दिन की अहमियत है, वही इंसानों के जान माल और आबरू की है। तो जिसने किसी के जान माल या आबरू को नुकसान पहुंचाया, तो गोया उसने इन तीन में से किसी एक की तौहीन की है, किसी एक की बेहरमती की है। ये मकाम है इंसानों का, और हम इंसानों को ऐसे समझते हैं कि जैसे कूड़ेदान का कूड़ा, जैसे चाहें बात कर लेते हैं, जान तक लेने में गुरेज नहीं करते, नशे लगाने में, बुरी आदतें लगाने में, बुरी हरकतें करने में, जुल्म करने में, पैसा खा जाने में, बेइज्जती करने में, हम बड़े आराम से ये सब कुछ कर जाते हैं। तो फरमाया कि कूलू लहुम कौलन मारूफ है, नहीं, अगरचे वो यतीम है, मस्कीन है, लेकिन उनके साथ भले तरीके से बात करो। अब ये जाहिर है कि वो अदब आदाब हैं जो हर मौके पर, जब भी किसी मौके पर यतीम मस्कीन आने का इम्कान हो, तो हमें ये ख्याल रखना है। वलयख्शल्लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़ियाफ़न खाफ़ू अलैहिम। अब ये जो तालीम है, ये पूरी बात के साथ भी जुड़ी हुई है, और यहाँ जो यतीमों के आने पर, तकसीम के मौके पर, पहला ज़ेहन उधर ही जाता है कि जब यतीम आ रहे हैं तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि चाहिए कि डरें वो लोग कि अगर वो अपने पीछे इसी तरह की कमज़ोर औलाद छोड़ जाते, तो क्या उनको उनके बारे में अंदेशे ना होते, क्या वो भी चाहेंगे कि उनके बच्चों को इसी तरह से गालियां देकर निकाल दिया जाए, क्या वो भी चाहेंगे कि उनका कोई वाली वारिस ना हो, क्या वो भी चाहेंगे कि उनके यतीमों का माल खा लिया जाए। जाहिर है कि नहीं चाहते, तो इसलिए दूसरों के साथ अच्छा सलूक करो ताकि मुआशरे में एक अच्छी फ़ज़ा कायम हो, एक अच्छा रवाज बने, ताकि किसी के भी यतीम को सताया ना जाए, किसी भी मस्कीन को सताया ना जाए, ना उनका माल खाया जाए, ना उनको डांटा जाए। तो ये वलयख्शा, तो चाहिए कि वो लोग जो इसका इम्कान हो कि अगर अपने बच्चों को छोड़कर चले जाएं, बच्चे अभी कमज़ोर हो, तो उनके ऊपर उनको कितने अंदेशे होंगे। खाफु अल्लाह के दो मानी हैं, एक ये कि उनके बारे में बुरे ख्याल आते हैं कि उनके ऊपर भी इस तरह का वाक्य ना हो जाए कि वो किसी के पास विरासत की तकसीम के मौके पर जाएं और धक्के देकर निकाल दिए जाएं, एक तो ये पहलू है। दूसरा इसका मतलब होता है कि उनके बारे में मोहतात होना, यानी कि हर तरह की कोशिश करके बुराई से बचाने की कोशिश जो होती है, वो वाली एहतियात। तो फरमाया कि अगर तुम बच्चों को छोड़ जाते, कमज़ोर बच्चों को, तो क्या तुम उसके बारे में ये एहतियात ना करते कि कहीं वो इस तरह की सूरत हाल का शिकार ना हो जाए। तो इसलिए तुम्हें अच्छा बनना है ताकि सारे लोग फिर इस रिवाज को अपना लें। मुझे याद है कि हमारे बचपन में इस तरह की बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी सारी जो रवायतें हैं वो टूट फूट गई हैं, तो अब हम कुछ बातें, कुछ रवैये छोड़ चुके हैं जो अच्छे थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला चाहते हैं कि जब किसी मौके पर, जब कोई खाना बांट रहे हों, या कोई कुर्बानी का गोश्त बांट रहे हों, या विरासत तकसीम हो रही हो, तो इनके साथ इज्जत के साथ पेश आया जाए। बेशक आप इनकार कर दें, वो एक अलग बात है, लेकिन इज्जत से पेश आना चाहिए। खाब थोड़ी बहुत चीज़ दे दें, कोई ज़्यादा ना दें, लेकिन कुछ दे दें ताकि उनको एक दिल आज़ारी ना हो और अच्छे तरीके से उनके साथ पेश आए। गुरबत को अल्लाह ताला ने खाना खिलाना और इस तरह की, आगे चलकर हम जब कुरान के आखिर पे पहुँचेंगे तो उस पर बहुत तलकीन की है, क्योंकि जो गरीब हैं वो अल्लाह ताला ने अपने आजमाइश के कायदे पर उनको गरीब रखा है। वो खा किसी प्रोपोर्शन में अच्छे मुल्कों में कम गरीब होते होंगे, लेकिन भारत वहाँ भी होते हैं, तो वो किसी ना किसी तरीके से हमें उनके साथ ताउन का मामला करते रहना है। ख़ास तौर से वो बच्चे जो कमा नहीं सकते। मस्कीन वो आदमी होता है जो बेबस होता है, कमा खा नहीं सकता उस तरह से। तो इसलिए मस्कीन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गरीब, नहीं, मस्कीन का मतलब है कि वो मेहनत भी करता है, काम भी करता है, लेकिन उसके बस की बात ही नहीं है ज़्यादा कमा सकना। तो वो फिर इस तरह की चीज़ों में उसको मसाइल हो जाते हैं कि वो घर में बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, वो मेहनत मजदूरी करके इतना कमा ही नहीं सकता। तो ये लोग मसाकीन होते हैं जिनके पास रास्ते बंद हो चुके होते हैं, लेकिन मेहनत भी कर रहे होते हैं, लेकिन खाने पीने में बस गुजारा सा हो रहा होता है। और रिश्तेदारों का तो वैसे ही हक अल्लाह ताला ने कायम कर रखा है। सूरह नहल में अल्लाह ताला ने बताया, वह ईताए ज़िल क़ुरबा, मैंने हुक्म दे रखा है कि रिश्तेदारों को देना। तो गोया ये एक फ़र्ज़ की नौइयत की चीज़ है। तो इस मौके पर अब ज़ाहिर है कि ये अल्लाह ताला चाहते हैं कि यतीमों के मामले में भी तुम्हें एहतियात करनी है, और जो ये वैसे गरीब गुरबा आ गए उनके साथ भी मामला अच्छा करना है। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बतूनहिम नारा। बेशक वो लोग जो यतीमों का माल खाते हैं ज़ुल्मन, ना हक हक मारते हुए, धोखा देते हुए, जैसे जो बातें पीछे आ गई हैं उनके खाएगा। इन्नमा याकुलूना फ़ी बतूनहिम नारा, तो वो बस अपने पेटों में आग भर रहे हैं। बस यसलौना सईरा, इसलिए भड़कती हुई आग में पड़ेंगे। तो वो लोग जो यतीमों का माल जुल्म करते हुए खा जाते हैं, जुल्म हर वो चीज़ जुल्म होती है जो जिसमें किसी का हक मारा जाए। आप मोहब्बत के साथ, सलीके के साथ हक मार रहे हो, बज़ाहिर पर्दापोशी करते हुए, किसी को समझ नहीं आ रही हक मारा जा रहा है, तो वो भी जुल्म होता है। जुल्म का मतलब ये नहीं होता कि ज़बरदस्ती छीन कर, नहीं, आपने तरीके के साथ, सलीके के साथ भी खाया है, हक मारा है, तो वो जुल्म हो जाएगा। और अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो ये भी जुल्म हो जाएगा। तो जुल्म का मतलब ये नहीं है कि इसमें ज़बरदस्ती छीना छपटी होती है, नहीं, वो भी जुल्म है जिसमें आप हक मारें बड़े सलीके के साथ, पता न चले कि मेरा हक मारा गया है और वो सारा कुछ खा गया हो, ये भी जुल्म। तो इसलिए सही तर्जमा यही है कि जिसने नाहक खाया या हक मारते हुए खाया। तो जिसने यतीमों का माल उनका हक मारते हुए खाया, तो वो समझ लीजिए कि अपने पेटों में आग भर रहे हैं। पेटों में आग भरने का मतलब है कि वो दोजख का सामान पैदा कर रहे हैं। तो सारे जिस्म जो है वो इस काबिल हो जाएगा, माल हराम का खाया हुआ, कि सारा ही जलने के लायक हो जाएगा। उस बात को बयान करने के लिए ये बयान किया गया, मुहावरतन है, या नहीं कि दुनिया में कोई उनको तकलीफ़ होगी, नहीं, हो सकता है आराम से अपनी सारी ज़िंदगी गुजार जाए यतीमों का माल खाते हुए, लेकिन नतीजा आखिरत में निकलेगा वह सही असलौना सईरा, कि वो आग में पड़ेंगे। भड़कती सईर, भड़कती आग को कहते हैं, तो वो भड़कती हुई आग में पड़ेंगे। इससे अंदाज़ा हो सकता है कि यतीमों का मामला कितना संगीन है। मैंने जब ये आयत नंबर 1 के बाद आयत नंबर 2 में वातुल यतामा अमवालहुम की बात की थी, तो ये बताया था कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी तमहीद बांधकर सबसे पहले जिनका मसला उठाया है वो यतीम है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये यतीमों का मामला कितना अहमियत रखता है अल्लाह के नज़दीक। और ज़ाहिर है कि अब इसमें मसाकीन भी शामिल कर दी और रिश्तेदार भी, तो ये सारे शामिल होकर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मामला कितना संगीन है। तो अब वो जो इनका माल खाएगा वो दोजख में जाएगा, ये कबीरा गुनाहों में से गोया हो गया। और कबीरा गुनाहों के बारे में मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि कबीरा गुनाहों का मतलब है कि हमारे बहुत ज़्यादा नेकियाँ खाई जाएं, बहुत ज़्यादा नेकियाँ खाई जाएं। मैं ये अर्ज़ किया करता हूँ कि ये अकाउंट्स की किताब की तरह का मामला होता है। नेकियां जो है वो समझ लीजिए कि इनकम है आपकी, और जो गुनाह है वो आपका खर्चा है। तो उधर आपने नेकी की, उधर गुनाह कर लिया, तो नेकियां खाई गई, ख़त्म होती जाती हैं। तो अगर कबीरा गुनाह करते हैं तो बहुत ज़्यादा नेकियां खाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा नेकियां अमालनामे में से ख़त्म हो जाती हैं। तो जो इस तरह का काम करेगा वो ज़ाहिर है कि फिर आग से बचने का इम्कान नहीं रहता उसके लिए जब कबीरा गुनाह करता, क्योंकि सारी ही नेकियां खाई जाती हैं। नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मौके पर आपने सहाबा से पूछा कि सबसे बड़ा फ़कीर कौन सा है, सबसे मुफलिस कौन है, सबसे बड़ा तो साहबा ने कहा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा मुफलिस, सबसे बड़ा गरीब आदमी वो है जो क़यामत के दिन बड़ी नमाज़ें पढ़ के रोज़े रख कर लेकर आएगा, लेकिन किसी को चुगली के बदले, किसी को गीबत के बदले, किसी को इल्ज़ाम के बदले, किसी को तोहमत के बदले, किसी को माल बटोरने के बदले अपनी सारी नेकियां दे दिला के फारिग हो जाएगा। ये वो गरीब है कि दोबारा कमा नहीं सकता, दोबारा कमा नहीं सकता। तो सबसे बदबخت गरीब वही है कि जिसके पास कमाने का मौका ना रहे। क़यामत वाले दिन ज़ाहिर है कि अब नए अमाल कमाने का मौका नहीं है, तो ये आदमी सबसे बड़ा मुफलिस है। ये एक हदीस ये जहन में थी, तो हमारे इधर एक वाक़या हुआ लिंक रोड मॉडल टाउन पे। दो बच्चे थे, सर्दियों के दिन थे, एक फैमिली के मियाँ बीवी के, तो वो कुछ औलाद की जो मनसूबा बंदी होती है उस सिलसिले में खातून ने ऑपरेशन करवा लिया। घर आए तो दोनों बच्चे गैस खुली रहने से फौत हो चुके थे। तो अब इनके पास पहले जो बच्चे थे फौत हो गए, नई औलाद पैदा करने का इम्कान नहीं है। ये वाली गरीबी क़यामत वाले दिन होगी कि अपना जो कुछ होगा हम दे दिला देंगे और नई कमा नहीं सकेंगे। तो ये वो सही असलौना सईरा जो है वो यतीम का माल खाने वाला असल में इस फकीर की तरह, कि दुनिया में तो उसने बहुत खाया, बड़े अय्याशी की यतीम के माल पर, लेकिन क़यामत वाले दिन सबसे बड़ा फकीर उठेगा, सबसे बड़ा गरीब उठेगा। तो ये तमहीद थी यतीमों के बारे में। तमहीद के बाद पहला जो ज़ाबता कह लीजिए कि सूरह में बताया गया, तमहीद इंसानों की बराबरी, वहदत आदम, वहदत इलाह के बाद उठाकर तो अब यतीमों के बारे में, मस्कीनों के बारे में दो बातें। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, खुदा की मखलूक, ये दो बड़े मुकदमे थे जो पहली आयत में कायम किए गए थे। इन दोनों की रोशनी में पहले अल्लाह ताला ने कहा कि तुम ये काम करोगे और जब क़यामत वाले दिन आओगे तो मैं अपनी मखलूक होने का बदला लूँगा, सयसलौना सईरा, तो आग में डाल दूँ। मुझसे अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि अल्लाह ताला को क्या पड़ी है कि वो, तो अल्लाह ताला हक का साथ देंगे, हक का बदला लेंगे, वो इंतकाम है किसके, हक के। तो जो लोग हक, अल्लाह ताला को कोई नुकसान नहीं होता, ना कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है। अल्लाह ताला को किसी फ़ायदे की ज़रूरत भी नहीं है नुकसान से बचने का, उसको नुकसान पहुंचा ही कोई नहीं सकता। वो एक आयत है जो कुरान की चंद आयतें हैं जो बहुत ही हैरत अंगेज़ मज़मून है उनमें, सूरा क्या नाम है इसका, मुरसलात है गालबन, सूरा मुरसलात में है कि क़यामत वाले दिन की बात हो रही, इन्ना जमाअनाकुम वलव्वलीन, हमने तुम्हें भी जमा कर दिया और पहलों को भी जमा कर दिया है। तो अब अगर तुम्हारे पास कोई चाल है तो चल लो मेरे खिलाफ, यानी तमाम इंसान अरबों की तादाद में अल्लाह के सामने बैठे होंगे क़यामत वाले दिन। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे मैंने सबको जमा कर दिया है, फिन फकीदों ने तो मेरे खिलाफ चाल चल दी है, तो चल के देख लो, नहीं कोई चाल नहीं चल सके। खुदा के मुकाबले में हमारी बसात क्या है, कुछ भी नहीं। यानी वो 1 करोड़ अरब लोग वहाँ बैठे होंगे और अल्लाह ताला बस एक जुमला बोलेंगे, ख़त्म हो जाओ, ख़त्म हो जाएंगे, हम क्या कर सकेंगे। तो इसलिए खुदा को कोई ना नुकसान पहुंचा सकता है ना कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है, वो सब कुछ जो कुछ कर रहा है वो हक़ के लिए कर रहा है। तो अब यतीमों का हक उसने इस तरह से लेना है कि जो माल खा कर जाएंगे क़यामत वाला दिन सजा भुगतेंगे। अल्लाह का कोई नुकसान नहीं किया लेकिन हक़ को उन्होंने नुकसान पहुँचाया है, तो अल्लाह ताला हक़ का यतीमों को पहुँचाया, गरीबों को पहुँचाया है, तो उसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। आगे अब विरासत का कानून शुरू हो रहा है, तो ये मुश्किल तरीन मकाम है कुरान मजीद का। इसमें एक मसला ये था कि अल्लाह ताला ने जो हिस्से तक बनाए हैं बज़ाहिर जो मानी उसके लग रहे हैं वो पूरे तकसीम नहीं होते, उसमें माल कम हो जाता, उसमें फिर एक उस हल उस्ताद ने पेश किया है और उसमें फिर हिस्से पूरे हो जाते हैं। तो पुराने लोग क्या करते थे, अभी तक जो रवायती हमारा तरीका है उसमें एलसीएम निकाल के तो हिस्से बांटे जाते हैं। लेकिन उस्ताद ने कहा कि एक जुमले को, एक लफ्ज़ का मतलब ले लें और एक असलूब को समझ लें तो फिर मसला हल हो जाता है। तो मैं आगे चलते हैं तो साथ साथ हल करता जाता हूँ। फरमाया कि यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी औलादों के बारे में वसीयत करते हैं। ये वसीयत का जो हुक्म सूरह अल-बकरा में गुजर चुका है उसके ऊपर गोया दोबारा अतफ हो रहा है कि अल्लाह ने वहाँ कहा था कि जब तुम्हारे मौत आने लगे तो वसीयत कर दिया करो। उसके बाद औलाद के बारे में अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हें वसीयत कर रहा हूँ, वसीयत की इजाज़त अपनी जगह पे है और ये हुक्म अपनी जगह पे है। तो दोनों को इकट्ठे निभाया जाएगा, क्योंकि आगे अल्लाह ताला बार बार जुमला बोलेंगे कि वसीयत पूरी करने के बाद ये तकसीम होगी, वसीयत पूरी करने के बाद ये तकसीम होगी। तो ये वसीयत के बाद कानून दे रहे हैं अल्लाह ताला, मैं और आप अपने जायदाद के बारे में कोई वसीयत कर सकते हैं, उस वसीयत के पूरा करने के बाद मेरे और आपके ऊपर जो कर्ज़ होगा वो अदा करने के बाद हमारे बच्चों में या हमारे अजीज़ों में ये तकसीम किया जाएगा। तो पहला इसलिए यूसीकुम से अल्फाज से शुरू किया कि अल्लाह ताला भी तुम्हें तुम्हारी औलादों के बारे में वसीयत करते हैं। जुमला औलाद से शुरू किया है तो इसका मतलब यह है कि असल वारिस औलाद है, असल वारिस औलाद है। आगे फरमाया लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़ल उनसियैन, एक लड़के का, बेटे का, एक बेटे का हिस्सा दो बेटियों के बराबर है। पहला ज़ाब्ता ये आ गया जो अल्लाह ताला वसीयत कर रहे हैं। पीछे बता दिया था अल्लाह ताला ने कि औरतों के लिए भी कुछ हिस्सा है और मर्दों के लिए भी कुछ हिस्सा है। इसको फिर आगे चलकर मज़ीद अल्लाह ताला वाज़े करेंगे आयत नंबर 27 में गालबन। या आयत नंबर 32 में वहाँ ये ज़ाब्ता बयान किया है कि जो अल्लाह ने एक दूसरे को दे दिया है ज़्यादा उसके तमन्ना ना करें, यानी ये बहस नहीं होनी चाहिए अल्लाह के कानून के बाद कि अल्लाह ने उसको कम दिया है या उसको ज़्यादा दिया है। वो वहाँ जाकर हम हिकमत देखेंगे आयत नंबर 32 में। यहाँ सिर्फ इतनी बात के कानून अल्लाह पे बताया कि मैंने हिस्से मुकर्रर कर रहा हूँ लेकिन औरतों के लिए अलग हिस्सा है, मर्दों के लिए अलग हिस्सा है, इतनी बात। अब यहाँ बच्चों को, चूँकि औलाद के बारे में वसीयत हो रही है, तो यहाँ पर सारे मर्द औरत जैसे बहस नहीं है, सिर्फ बच्चे बेटे के तौर पर और बेटी बेटी के तौर पर जरे बहस है। तो बेटे का हिस्सा दो बेटियों के बराबर होगा। फाइन कुन्ना निसान, और अगर सिर्फ बेटियां ही हों, फौकसना तैन, दो से ज़्यादा, और दो भी इसमें शामिल है, दो या दो से ज़्यादा, क्योंकि आगे सिर्फ एक का जिक्र आया है तो इसका मतलब है कि दो और दो से ज़्यादा पहले वाले हुक्म में आ जाएंगी। फलाहुन्ना सुलसा मा तरक, तो उनके लिए तरके का 2/3 है, अगर दो या दो से ज़्यादा है तो वो पूरे जो बचा तरका है उसमें से 2/3 उनको दिया जाएगा, सुलसा, दो तिहाई दिया जाएगा, यानी पूरे तरके को तीन पे तकसीम कर लिया जाएगा, दो इनको दे दिया जाएगा, एक अलग रख लिया जाएगा। तो ये कब की सूरत में हो गया, जब सिर्फ बच्चियां हैं। वाइन कानत वाहिदा, और अगर सिर्फ एक बेटी है, फलाह निस्फ, तो उसके लिए पूरे जायदाद का आधा है। अब ये बच्चों के बारे में वसीयत हो गई। इसमें जो मा तरक है कि तरके का 2/3, पुराने जो उलमा हैं हमारे वो सारे मा तरक पूरे तरके में से ले रहे हैं, पूरे तरके में से लेते हैं तो फिर हिस्से तकसीम नहीं होते, इसलिए फिर उनको एलसीएम निकालना पड़ता है, जोजाफिकल निकालना पड़ता है। और उस्ताद कहते हैं कि मा तरक को ले लें बचे हुए के मानी में। उसकी दलील उनके पास ये है कि वो कह रहे हैं कि आगे जो असलूब है जो वाले वाले अव्यय ही का जुमला है, निसफ के बाद जो लिखा हुआ है, इसका जुमला तकाजा कर रहा है कि वो जुमला ऐसा बोल रहा है कि ये बच्चों के लिए आप मिठाई ले जाएं, दो दो लड्डू सारे बच्चों को देने हैं, अगर वालदैन हो तो चार उनको दे दीजिए। तब वो कह रहे हैं कि चार इनको देने हैं तो दो दो कैसे पूरे आएंगे, तो पहले माँ बाप को दे लिए जाएं फिर दिया जाएगा, क्योंकि जुमले का मतलब यही है कि ये मिठाई मैं आपको बच्चों के लिए दे रहा हूँ, अगर वालदैन हो तो चार लड्डू उनको दे दीजिए, अब बाकी जो बचेगी वो तकसीम होगी, इस तरह से वो कह रहे हैं। तो ये असलूब और माँ तारक के अंदर वो ये मफहूम ले रहे हैं, यही माँ तारक है जो सारा मसला पैदा करता है, बाकी माँ तारक मसला पैदा नहीं करते हैं। क्योंकि अभी यहाँ देख लीजिए कि दो तिहाई दे दिया आपने बच्चियों को, दो तिहाई, और अगर उनका मियाँ है आगे चलकर माँ बाप हैं तो दोनों को 1/3 मिल जाएगा, और अगर उस मरने वाले का मियाँ हो या बीवी हो तो पैसे नहीं होंगे। यानी दो बेटियां हैं, माँ बाप हैं और एक शौहर है, दो बेटियां, माँ बाप और शौहर हो तो हिस्से पूरे नहीं होते हैं, ठीक है? तो दो तिहाई तो आपने बच्चियों को दे दिया, एक तिहाई आपने माँ बाप को दे दिया, और शौहर है बीवी है अगर, तो पैसे नहीं बचते। तो फिर वो क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, सबके हिस्से निकाल के बराबर कर देते हैं। उस्ताद कहते हैं कि माँ तारक को बचे हुए के मानी में ले लें, यानी कि बचे हुए के मानी ले लें, असलूब के मुताबिक उनको बचे हुए में से मिलना चाहिए। एक तीसरा हल भी है, वो ये कि फ़इन कुन्ना निसान फ़ौकसनतैन, ये वाले जुमले को आप बिल्कुल बच्चों के लिए जुमला और वाले अब्वैही को अलग मान लें। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके मिक्स औलाद है तो उनको बेटे को दुगना मिलेगा अपनी बहन के मुकाबले में, और अगर सिर्फ बच्चियां ही हों, ना वालदैन हो ना शौहर और या बीवी हो, सिर्फ बच्चियां ही हों तो उनके लिए यह हिस्सा है, ठीक है? उसका करीना क्या है? वो करीना यह है कि अगले जुमले को आप देखिए, वाले अब वही ही ले कुल्ले वाहिदिन मिनहुम सुदस मिम्मा तारक इन कान लहू वलद, बच्चों को तकसीम करते करते अगर ये कहा जाए कि अगर आप ये मिठाई बच्चों की है और अगर वालदैन हो तो दो लड्डू उनको दे दीजिएगा, अगर औलाद ना हो तो, ये जुमला नहीं बोला जा सकता क्योंकि औलाद पर तो पहले ही तकसीम हो रही है, ये मिठाई बच्चों के लिए ले जाए, अगर माँ बाप हों और उनके बच्चे हों तो दो लड्डू उनको दे दीजिए, बच्चों की बात तो हो रही है, तो ये जुमला बोलना नहीं चाहिए। तो इसलिए ये जो जुमला है बीच में कि सिर्फ एक केस ऐसा है कि जिसमें सिर्फ बच्चियां हों, ना वालदैन हो ना शौहर या बीवी हो मैयत की, तो फिर ये हिस्सा तकसीम होगा, अगले सारे हिस्सों में फिर कोई मसला पैदा नहीं होता, ठीक है? तो आगे चलते हैं, या मुश्किल यही थी, बाकी सारा कानून बहुत साफ है। माँ तारक, पहला माँ तारक जो है फलहुन्ना सुलस माँ तारक, ये सारे मसले पैदा करता है, तो इसको या माँ बाकिया के मानी में ले लें, इजाफत के बाद सुलस माँ तारक के जो बचा हुआ है उसका 2/3, ये माँ बाकिया के मानी में लेना मुश्किल है, लेकिन बहरहाल ये एक हल है, दो तीनों मैंने आरा बता दी, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। आगे चलते हैं, वाले अब वही ही ले कुल्ले वाहिदिन मिनहुम सुदस मिम्मा तरह का इन कान लहू वलद, अगर मरने वाले की औलाद है तो फिर दोनों माँ बाप के लिए हर एक के लिए 1/6 1/6। अब यहाँ पर जेंडर का असूल टूट गया, यानी माँ के लिए भी 1/6 और बाप के लिए भी 1/6, अगर औरत की बिना पर फैसला होता तो यहाँ माँ का कम होना चाहिए था, इस आगे चलकर एक और जगह पर बराबर किया। तो खुदा के पेश नज़र कोई और मकसद है, औरत होना या मर्द होना पेश नज़र नहीं है, लेकिन बात तो ऐसी की जाएगी कि बच्चों को इतना दे दें और बेटियों को इतना दे दें, तो यहाँ फरमाया लेकुल्ले वाहिदिन मिनहुम सुदस, दोनों यानी माँ बाप में से दोनों के लिए 1/6 होगा, मिम्मा तरक पूरे तरके में से, पूरे तरके में से 1/6 दोनों को मिलेगा, मैयत के अगर बाल औलाद है तो फिर ये होगा। फइन लम यकुन लहू वलद, और अगर उसकी कोई औलाद नहीं है, फवारिसाहू अबवाहू, तो फिर सारी जायदाद के वारिस माँ बाप है। अगर औलाद है और माँ बाप भी हैं तो माँ बाप को 1/6 मिलेगा दोनों को, और अगर औलाद नहीं है तो सारे तरके के वारिस माँ बाप है। फाले उम्मे हिस्सुलस, अब फिर माँ को 1/3 दे दिया और बाप को 2/3 दे दिया। तो जब ये जुमला बोला जाए कि वारिस वालदैन है, माँ को 1/6 1/3 दे दो, तो बाकी खुद ब खुद वालिद की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर फिर फर्क आ गया है। वो जो पीछे शुरू में बताया था कि उनके लिए अलग हिस्सा है, उनके लिए अलग हिस्सा है, तो उसको अब देखिए कि किस तरह से अल्लाह ताला वाजे करते चले जा रहे हैं। एक जगह बराबर है लेकिन अभी दो जगहों पे अल्लाह ने फ़र्क कर दिया है। बच्चे हों और माँ बाप हों तो माँ बाप का बराबर है, बच्चे ना हों तो पूरी जायदाद के वारिस वालदैन हैं, अब माँ को अपने शौहर के मुकाबले में आधा मिलेगा, ठीक है, उसके लिए 2/3, उसके लिए 1/3। फाइन काना लहू इखवा, और अगर मरने वाले के औलाद नहीं है लेकिन बहन भाई है। अब अगला केस आ गया है कि अगर वालदैन के मरने वाले के वालदैन हैं, औलाद नहीं है लेकिन बहन भाई हैं, फले उम्मे सुदुस, तो माँ को फिर चला जाएगा 1/6, खुद ब खुद वाजे है कि बाप को भी यही चला जाएगा। यानी वो जैसे ही बहन भाई आ गए तो बहन भाइयों को बच्चों की तरह कंसीडर कर रहे हैं अल्लाह ताला, तो फिर वालदैन का हिस्सा वही हो जाएगा जो औलाद की सूरत में वालदैन को मिल रहा था। लेकिन ये सारे हिस्से होंगे मिम्बाद वसीयतिन, वसीयत पूरी करने के बाद, यूसी बिहा, जो मरने वाले ने की होगी, औदैन या उसका कर्ज अदा करने के बाद। तो अब कायदा क्या हो गया? पहला कायदा ये हो गया कि लड़कों का बेटे का हिस्सा बेटी के मुकाबले में डबल है, पहला कायदा। दूसरा कायदा ये कि अगर बेटियां हों सिर्फ और दो या दो से ज़्यादा हों तो उनको 2/3 पूरा मिलेगा, बाकी अलग रख लिया जाएगा, उसका कोई ज़ाबता मालूम नहीं। और अगर एक ही बेटी है तो उसको आधा मिलेगा पूरी जायदाद में से। तो ये केस यहाँ पे ख़त्म हो गया, मुकम्मल हो गया। हमारा टाइम होने वाला है तो ये तो चलिए यहाँ पर रोक लेते हैं। तो उसको मिल जाएगा, ठीक है जी। और अगर अब अगला केस शुरू हो गया कि अगर माँ बाप मौजूद हैं और वालिद औलाद भी मौजूद है तो दोनों माँ और बाप को 1/6 1/6 मिलेगा, और अगर औलाद नहीं है तो पूरे जायदाद के वारिस दोनों माँ बाप होंगे, अब माँ को आधा मिलेगा बाप के मुकाबले में, बाप को 2/3 मिलेंगे और वालिदा को 1/3 मिलेगा। और अगर औलाद नहीं है लेकिन बहन भाई हैं तो फिर वापस इससे चले जाएंगे वही 1/6 1/6 1/6 दोनों के लिए। और ये सारा ज़ाबता वसीयत पूरी करने के बाद और कर्ज़ देने के बाद होगा। तो यहाँ पर हम रोक लेते हैं, ये जुमला एक मुकम्मल कर लें, मेरा ख्याल है 2-1 मिनट लगेंगे लेकिन, ताकि यह आयत मुकम्मल हो जाए। 11 नंबर, आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक्रबु लकुम नफा। तुम्हारे आबा यानी वालिद व अबनाउकुम और तुम्हारे बेटे, ला तदरून तुम नहीं जानते, अय्युहुम अक्रबु लकुम नफा कि इनमें से कौन तुम्हारे लिए नफे में ज़्यादा करीब है। यानी तुमने ये नहीं जानते कि किस मौके पर वालिद को पैसे ज़्यादा देने चाहिए जायदाद में से या बेटे को। तो इसलिए मैंने जो ज़ाबता दिया अल्लाह ताला बता रहे हैं वो ये कि औलाद को मैंने सर फहरिस्त रखा है, अगर औलाद होगी तो वालदैन का हिस्सा कम हो जाएगा, औलाद नहीं होगी तो वालदैन पूरे के पूरे वारिस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि विरासत में किसको ज़्यादा पैसे दिए जाएँ किसको कम दिए जाएँ, तो तुम्हारे लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए चूँकि तुम नहीं जान सकते तो फरीज़तम मिन अल्लाह, तो अल्लाह ने यह मुकर्रर कर दिया ताकि झगड़ा ख़त्म हो जाए, वगरना कानून यही दिया जाता, अगर तुम जान सकते होते कि वालिद को देना बेहतर है या बच्चों को औलाद को देना बेहतर है या वालदैन को, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर छोड़ देते, लेकिन चूँकि अब तुम जानते नहीं हो तो इसलिए मैं खुद मुकर्रर कर रहा हूँ। तो यह फरीज़तम मिन अल्लाह है, अब तुमने इसमें अपनी अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाने, जो मैंने फ़र्ज कर दिया सो कर दिया। इन अल्लाह काना आलिमन हकीमा, और ये कानून जो अल्लाह ताला दे रहे हैं ये अपने इल्म हिकमत की बुनियाद पे दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम रोक लेते हैं, तो इंशाल्लाह अगले सोमवार को 12 नंबर आयत देखेंगे। वह आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।